समाधान समाधान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, रावण अपहरण करके ले गए थे सीता मैया को और अशोक वाटिका में उनको बिठाया हुआ था, लेकिन जब जब वो जाते थे सीता मैया के सामने तो वो उन्हें देखा नहीं करती थी, मुंह फेर लिया करती थी। अब रावण जी बड़े परेशान हो गए कि सीता जी तो मुझे देखती ही नहीं है। उन्होंने अपने सलाहकारों से पूछा कि क्या किया जाए, तो किसी ने सलाह दी कि आप ऐसा कीजिए, मायावी तो आप हैं ही, आप राम का रूप धारण करके जाइए। तो रावण ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने ये तरीका नहीं आजमाया, लेकिन जब जब मैं राम बन के जाता हूँ सीता जी के पास तो मैं उनकी ओर देख ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे राम के वेश में हर नारी अपनी माता दिखाई देती है, अपनी बहन दिखाई देती है, अपनी पुत्री दिखाई देती है। तो जिस भाव से अभी मैं उन्हें देखता हूँ वो भाव राम का वेश धारण करने के बाद रहता ही नहीं है। मित्रों, कितनी अच्छी बात है ना, केवल वेश धारण करने से ही पूरा चिंतन परिवर्तित हो जाता है। तो यदि हम भी राम का वेश धारण कर लें तो हर नारी हमें अपनी माँ दिखाई देगी, अपनी बहन दिखाई देगी, अपनी पुत्री दिखाई देगी और सारा वसुधा ही हमें अपना परिवार दिखाई देगा। लेकिन हो ये रहा है कि हमारे अंदर ही राम और रावण के जो अंश हैं, रावण का अंश शायद कहीं ज्यादा प्रबल हो गया है कलयुग में, इसीलिए हम कोई दूसरी दृष्टि रखते हैं। राम जी किसी कोने में बैठे हुए हैं, अब उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है, उस अच्छाई को जागृत करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम समाज को एक सुंदर दृष्टि से देखें, जिससे समाज का माहौल भी बहुत खूबसूरत हो सके। ऐसे सुंदर प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बड़ा अच्छा लगा जब मैं रामायण का ये प्रसंग सुन रहा था भ्राता जी, कहीं कथा में मैं बैठा हुआ था, ये प्रसंग आया, बड़ा अच्छा लगा कि सचमुच देखिए एक वेश धारण करने के बाद ही सारा चिंतन, सारी दृष्टि सब परिवर्तित हो जाता
है। जो बहुत सुंदर एक शिक्षा शिव बाबा ने हम सबको दी है कि यदि तुम आत्मिक स्वरूप में आ जाओ तो सचमुच ये संसार बदलने लगे। अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट सोल्स, सब कुछ बदल जाए। यदि तुम इस फीलिंग में आ जाओ कि कल्प मैंने इस माया को जीता है, अब मेरी विजय निश्चित है, तो ये संपूर्ण माया जो बड़ा विकराल रूप धारण किए हुए है, कागज का शेर प्रतीत होने लगे, तो सचमुच अपना वेश यानी स्वरूप बदल लेने से हमारे विचार महान हो जाते हैं, बदल जाते हैं और उसका प्रभाव इस संसार को परिवर्तन करने में बहुत ज्यादा होता है। आज क्या हो गया है, बॉडी कॉन्शियसनेस हो गया,
जी, जी,
मैं सुंदर हूँ, ये काला है,
जी,
स्वरूप,
हाँ, हाँ,
केवल बाहरी नहीं, कपड़े अच्छे नहीं, आंतरिक चिंतन कैसा है, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, जिसे हम स्मृति कहते हैं, हायर कॉन्शियस, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो कैसी है, उसके आधार से हमारे चारों ओर वातावरण बनता है और उससे सब कुछ बदलता है।
बिल्कुल, मतलब हमें अपने दैहिक स्वरूप को भूल के आत्मिक स्वरूप में स्थित होना होगा, मतलब ये वेश धारण करना होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो ये पवित्र भाव शायद जागृत हो जाएगा,
सब के अंदर पवित्र फीलिंग हो जाएंगी
जी।
सब अपने लगेंगे, ये जो भेदभाव है बड़े छोटे ऊंच नीच का,
जाति पाति
समाप्त हो जाएगा।
जी जी व्रता जी, ये भी बात कही जाती है कि हमारे अंदर ही राम और रावण है, तो ये जो जैसे मैंने कहा कि राम कहीं ना कहीं बहुत कोने में बैठे हुए आज कलयुग में प्रतीत होते हैं, मतलब अच्छाइयां कम दिखती हैं और ये जो रावण का स्वरूप है वो ज्यादा भपके वाला दिखाई देता है। क्या ऐसा करें, जैसे आपने एक आत्मिक स्वरूप की बात कही कि राम जी ज्यादा प्रबल हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं और रावण पराजित हो जाएं।
देखिए, सत्य ये है कि हमारे अंदर संपूर्ण देवत्व विद्यमान है
जी,
क्योंकि ये एक बहुत गूढ़ रहस्य स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा ने हम सभी के आगे खोल दिया है कि तुम सतयुग और त्रेता युग में सभी देवता थे, इसलिए भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन पूजन है
जी, जी।
तो उसने हमें ये याद दिलाया, तुम देवता थे, तुम देवकुल की महान आत्माएं हो, तुम बहुत पवित्र थे, तुम्हारे चेहरों पर दिव्य तेज और कांति, और तुम्हारा जीवन संपूर्ण सुख शांति खुशी आनंद प्रेम से भरपूर था, याद दिलाया, याद ही नहीं दिलाया, हमें बार बार कह के उस फीलिंग में ले गए शिव बाबा, तो वो देवत्व तो हमारे अंदर था वो जागृत होने लगा। इसलिए बहुत लोग पवित्र बन गए, बहुतों के चित्त शांत हो गए, बहुतों के जीवन में दिव्यता आ गई। तो हमारे अंदर ये देवत्व विद्यमान है, सबके अंदर है, जो देवता रहे थे उनमें देवत्व विद्यमान है, और जो देवता नहीं थे वो भी जब इस सृष्टि पर आए तो वो सब आत्माएं भी पवित्र थी, बिल्कुल सतो प्रधान, एकदम जीवन मुक्त, उनके अंदर वो महानताएं वो अच्छाइयां सब छुपी हुई हैं, अब बस दब गई हैं, ऊपर लेयर्स आ गई हैं, उनको कोई याद नहीं दिलाता। आज तो याद दिलाया जाता है और बहुत कुछ, टीवी पे क्या क्या याद दिलाया जा रहा है, गीतों में क्या क्या याद दिलाया जा रहा है, गंदगी गंदगी याद दिलाई जा रही है। तो अगर उस देवत्व को हम जगा लें तो सचमुच ये जो असुरियता है, ये जो माया का साम्राज्य है, मैं कहूँ प्रैक्टिकल चीज आज की, दुख है, अशांति है, टेंशन है, संबंधों में संघर्ष है, मनुष्य के मन में धन के प्रति बहुत लोभ और स्वार्थ है, बहुत बड़ी चीज बुरी चीज हो गई है, धन ही सब कुछ है, लूट लो अपने पड़ोसियों का, लूट लो अपने भाइयों का, मैं सुखी हो जाऊं तुम कंगाल हो, ये बातें सब समाप्त हो जाएंगी, आत्मसंतोष होगा। ये बात आ गई है तो मैं ये कह दूं, बहुत लोगों के लिए ये संदेश है कि दूसरे के धन से कभी सुख नहीं मिलेगा। दूसरे के धन से आप अपने बच्चों की पालना करोगे, आपके बच्चे योग्य बिल्कुल नहीं बनेंगे। दूसरों का धन आप हड़पोगे, वो आपकी बीमारियों में निकल जाएगा। इसलिए अपना हिस्सा लेकर सुखपूर्वक आगे बढ़ो, ईमानदारी से रहो, जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। अन्यथा धन रखा रहता है, मन उस बिस्तर पे कराहता रहता है, हॉस्पिटल में कोई यूज नहीं है ऐसी धन संपत्ति का, बेकार लगती है मनुष्य को।
जी,
तो अगर हम इस देवत्व को जागृत कर लें तो ये सब समस्याएं लोप हो जाएं।
प्रताप जी, आपने एक बहुत ही प्यारी सी बात कही है कि हमारे अंदर देवत्व है, उसे जागृत करने की आवश्यकता है, लेकिन जागृत कराने वाला भी तो कोई चाहिए। जैसे कई बार मैं आपसे कह चुका हूँ कि रामायण की जब बात आती है तो वो बात आती है कि हनुमान जी भी भूल गए थे कि भाई मेरे अंदर इतनी पावर है, अच्छाइयां हैं, मैं छलांग लगा सकता हूँ, जा सकता हूँ लंका। जामवन जी ने उन्हें याद दिलाया। आज जो बातें हमें दी जा रही हैं वो तो शायद और विस्मित करने वाली बातें हैं कि तुम शरीर हो या मतलब जो भी नेगेटिव चीजें हम देखते हैं, ये अच्छी स्मृतियां, अच्छी बातें कि तुम देवकुल की संतान हो, ये बातें कौन याद दिलाए, कैसे जागृत करें।
देखिए, यही याद दिलाने के लिए स्वयं भगवान को इस धरा पर आना पड़ा, जो त्रिकालदर्शी है, जिसने ही वो सत्ययुग रचा था, जिसने मनुष्य को देवता बनाया था, उसने आकर ये आत्म जागृति दिलाई, तुम आत्माएं हो और तुम आदि काल में कई जन्मों तक देवता रहे हो, देवियां रहे हो, तुम्हारे अंदर वो सब है, और ये बात भी रोज रोज याद दिलाई। इससे हमें धीरे धीरे, हमारे अपने अनुभव हैं, धीरे धीरे याद आता गया हम कितने महान हैं, वो अंदर की सोई हुई चेतना जगती गई, और फिर सिखाया कि मेरे से अपना बुद्धि योग लगाओ। तो क्या होता है कि वो परम पवित्र है, उससे हमारे अंदर प्योर वाइब्रेशंस आते हैं, और जब प्योर वाइब्रेशंस आते हैं तो वो देवत्व जल्दी जागृत होता है और लंबा समय जागृत रहता है। तो परम पिता से, उस सर्वशक्तिवान से, उस निराकार सत्ता से जब हम योग लगाते हैं, जब उस पर अपनी मन बुद्धि को लगाते हैं, तो उसकी सारी एनर्जी हम में आकर हमारे सोए हुए देवत्व को और भी जो योग्यताएं हैं उन्हें जगा देती हैं। देखिए, कुछ ऐसी योग्यताएं भी हैं जो द्वापर युग के बाद हम में थी। कोई बहुत अच्छा कवि था, कोई बहुत अच्छा पोएट था, कोई बहुत अच्छा राइटर था, कोई बहुत अच्छा आचार्य हुआ जिसने वेद लिखे, दर्शन लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, किसी में और कोई संगीतज्ञ था, कोई बहुत अच्छा डांस करने वाले थे, वो सब भी हमारे अंदर छुपा रहता है। तो जैसे ही हम योग युक्त होते हैं वो योग्यताएं और वो कलाएं भी ऊपर आने लगती हैं, इमर्ज होने लगती हैं। तो स्वयं भगवान ही केवल सक्षम है जो मनुष्य को याद दिलाता है, सोई हुई इन सभी बातों को जगाता है, लेकिन बार बार याद दिलाता है, क्योंकि हम सब सो गए थे, पूरी तरह सो गए थे, हमने देखा उसने हमें बार बार जगाया, इसलिए देवताओं को जगाने की बहुत प्रथा है भक्ति मार्ग।
मंदिरों में भी जगाया जाता है। तो परमात्मा ने जगाया आकर के, अब जो सारे संसार में लोग हैं वो कैसे जागे भ्राता जी, क्योंकि परमात्मा डायरेक्ट तो उन्हें नहीं कहेंगे कि जागो जागो मैं आ गया हूँ, क्या माध्यम है, क्या तरीका
तब
है,
उनको
कैसे लोग जागे?
तब उनको हम जगा रहे हैं, हमारी बहनें हमारे सेवा केंद्रों पर, देखिए 15-16 हजार बहने भाई समर्पित कर चुके हैं अपने जीवन को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, स्वयं भगवान के ऊपर वो समर्पित हो चुके हैं, वो ये सब कार्य कर रहे हैं, जन जन को संदेश दे रहे हैं, उनकी सोई हुई चेतना को जगा रहे हैं। तो ये विशाल स्तर पर कार्य चल रहा है। पहले हमारे पास 10 लोग थे जगाने वाले, फिर 100 हुए, फिर 1000 हुए, फिर 1,00,000 हुए।
पता जी बड़ा अच्छा लगता है जब हम ये सुनते हैं कि सतयुग में ऐसा था कि सभी बहनों के लिए, नारी शक्ति के लिए सबकी दृष्टि माँ की दृष्टि थी, या बहन की दृष्टि थी, या पुत्री की दृष्टि थी, बड़ा पवित्र भाव था। क्या कलयुग में ये संभावना है कि सबकी नजर इतनी शुद्ध हो जाए कि हर नारी को हम अपनी माँ के रूप में, बहन या पुत्री के रूप में देखें?
देखिए ये कलयुग है तमोप्रधान दुनिया, सबकी तो हम गारंटी ले नहीं सकते, लेकिन जो देवकुल की आत्माएं हैं, जो भारत की महान आत्माएं हैं, भारत की जनसंख्या तो 125 अरब तक पहुंच रही है, उसमें से कम 10 करोड़ तो ऐसे हैं जो देवकुल की बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये 10 करोड़ अपनी दृष्टि को पवित्र बना लेते हैं, बनाएंगे, जिन्हें सब में, भाई बहन और मात माँ और बेटी नहीं, सब में जिन्हें आत्मा दिखाई देगी, सबके मस्तक के मध्य में चमकती हुई ज्योति जिन्हें दिखाई देगी। और सचमुच अगर 10 करोड़ लोग ऐसी मनोस्थिति बना लेते हैं तो सबको बनाने की जरूरत ही नहीं, सबका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम बात 33 करोड़ की करते हैं व्रता जी, तो क्या भारत में ही वो 33 करोड़ देवी देवता हैं या विश्व में फैले हुए हैं?
देखिए उस समय का भारत वृहत्तर भारत था, ये इतिहास में नाम आ गया विशाल भारत,
जिसमें बहुत सारे देश,
ये जो बहुत सारे आसपास के देश हैं, बर्मा और उधर मलेशिया तक, सिंगापुर तक, चीन का बहुत बड़ा हिस्सा, रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा, और इधर ईरान, इराक और मुस्लिम कंट्री जो आज हैं, वो सब अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो था ही, ये सब भारत के अंदर थे। तब ये बाउंड्री नहीं होती थी, भाई ये मेरा बॉर्डर है, इसके पार नहीं जाना है, अब तो आकाश की भी हो गई। तब एक ही था, एक लैंड जिसको सचखंड कहते हैं, स्वर्ग भूमि कहते हैं। ये भेदभाव, ये धर्मों के भाव, ये सब बाद में बने हैं। तो ये विशाल भारत था वास्तव में, इस सारे की आबादी 33 करोड़ थी और वो सब देवता थे।
तथा जी शास्त्रों की बात यदि निकल पड़ी है तो एक बात मैं और आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये बात तो आती है कि चलो दुर्योधन थे या दुशासन थे जो जिन्होंने चीरहरण किया, दुशासन जी ने कह लीजिए, या फिर कीचक की बात आती है कि उनकी भी दृष्टि ठीक नहीं थी, लेकिन वही बात ये भी आती है कि सूर्पणखा भी थी या पुतना भी थी। तो जैसे पुरुषों में ये भाव रहा था वैसे ही नारियों में भी ये भाव दिखाया गया है, तो आज के दौर में भी पुरुषों की बात तो आ जाती है कि चलो वो अपने आप को ठीक करें, क्या नारियों का भी कुछ दायित्व तो बनता है कि कुछ ऐसा परिधान हो या कुछ ऐसी मर्यादाएं हो ताकि ये चीजें फिर देखने सुनने में ना आए?
देखिए बात ऐसी है, जब संसार तमोप्रधान बनता है
जी,
जब यहाँ धर्म की ग्लानि होती है तो स्त्री हो या पुरुष हो, गिरावट तो सब में ही आती है, पर नारी क्योंकि लज्जावान होती है, वो अपनी बहुत सारी चीजों को बाह्य रूप से अभिव्यक्त नहीं भी करती है, पुरुष थोड़े और तरह के होते हैं, लेकिन अब थोड़ा खेल ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है, इसलिए बात केवल परिधान की नहीं, बात है अपने अंदर की प्योरिटी को जगाने की। हम इसमें किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि आजकल के लड़के और लड़कियां जिस माहौल में रहते हैं, कॉलेजों में जैसा माहौल है, सब में दूषित वृत्तियां हो गई हैं, लेकिन अब युवकों में बहुत अच्छी जागृति आई है, और मैं ऐसा कहूंगा कि 10% युवक जगने लगे हैं, जिन्हें कड़वे अनुभव हो गए हैं संसार में, जिन्होंने गंदगी में जाकर देख लिया और वो हटाए, यू नो दिस विल स्पॉइल आवर लाइफ, बिल्कुल महसूस हो गया कि बिगड़ जाएगा सारा खेल, हम किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन अभी 90% युवकों को विशेष रूप से जगाने की आवश्यकता है, तो दोनों को ही, स्त्री पुरुष दोनों को ही, जगना होगा, और उसमें भी जो मातृ शक्ति है, मेरा कहने का अर्थ है जो बड़े हैं जिनको बच्चे हैं, उन्हें अब अपनी प्योरिटी को बहुत पढ़ाना चाहिए, अपनी मर्यादाओं को बहुत अच्छा से अपनाना चाहिए, अपने परिधान को भी एक रॉयल जैसे देवताओं का परिधान होता है वैसा अपना लेना चाहिए। हमारा देश बहुत महान है, हमारी कल्चर सचमुच अनुकरणीय है, हमने दूसरों का अनुकरण कर लिया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हमें एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि पुनः सारा संसार भारत का अनुकरण करे, हमारी मातृशक्ति का अनुकरण करे।
बिल्कुल, चलिए निकट भविष्य में जल्दी ही ऐसा हो ऐसी हम कामना करेंगे। भ्राता जी, कुछ मेल्स आए हैं, मैं मेल्स की ओर लिए चलता हूँ, जो कि बात हमारी पवित्रता की शुरू हुई थी, तो एक मेल पहला हमारे पास वैसा ही आया। भ्राता जी, ये कहते हैं, ओम शांति, आई एम बीके राजेंद्र फ्रॉम ओडिशा, और ये कहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि पास्ट में मैंने जो मूवीज देखी हैं, कुछ अश्लील पिक्चर मैंने देखा है, उसकी अब मुझे याद आती है, तो जब मैं योग करता हूं तो योग तो नहीं लगता, लेकिन वो दृश्य मुझे याद आने लगते हैं, और योग में मुझे जो अनुभूति होनी चाहिए वो अनुभूति नहीं होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए?
ये एक ऐसी समस्या है जो बहुतों के सामने आ रही है, बात केवल युवकों की नहीं
जी,
बड़े बड़े लोग हमें मिलते हैं बड़ी आयु के, 60 साल 70 साल के भी, जो ये कहते हैं कि हमारा पास्ट बहुत अच्छा नहीं बीता, और वो सभी स्मृतियां आकर हमें स्वप्नों में भी हमारी नींद खराब करती हैं, रात को भी और दिन में भी जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो आने लगती हैं, खास खास सारा दिन याद नहीं आएंगे, जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो वो बहुत फोर्स से याद आएगी और हम बिल्कुल अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। तो ये ऐसा ही है, मैं अगर खुले रूप से कहूं तो ऐसे मनुष्यों ने ईश्वरीय आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, तो ये माया है, माया उसका बदला लेती है, वो उन्हें सुख चैन से नहीं रहने देती है। लेकिन खैर, कुछ भी हो, हमें तो उसकी दवाई निकालनी है, ताकि जो योग पथ पर आ रहे हैं वो इस समस्या से मुक्त हो और उनका चित्त शांत होकर एकाग्र हो और उनका बुद्धि योग अपने परम पिता से लग जाए, ताकि उनको एक प्योर एनर्जी मिलने लगे, उनको परमात्म प्रेम मिलने लगे और उनके जीवन में सुख शांति का भंडार भरने लगे। देखिए, एक तो सबसे पहले ये करना होगा, मैं दो चार विधियां बताता हूं। सवेरे उठते ही जैसे ही आंख खुले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 108 बार लिखना होगा आंख खुलते ही, भले फ्रेश हो आए और बैठ के बाबा को गुड मॉर्निंग किया, उसे मिलन किया एक दो मिनट और लिखना प्रारंभ करें। इससे क्या होता है, अंदर की शक्तियां भी जागृत होती हैं। रात को सोने से पहले मैं एक महान आत्मा हूं, 108 बार लिखें, इससे अंदर की प्योरिटी जागृत होगी, आत्मा को बल मिलने लगेगा। ये दो चीजें करने के साथ सवेरे और शाम कोई भी टाइम, जी जी, पांच स्वरूपों का अभ्यास। वो पांच स्वरूप हैं, मैं आत्मा, इस देह में मैंने प्रवेश किया है, मैं तो चेतन आत्मा हूँ, परम पवित्र हूँ, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, आत्मा का चिंतन और आत्मा के स्वरूप को देखना। फिर मैं आदि काल में देवता थी, देवी थी, अपने स्वरूप को सामने ले आए, मेरे सिर पे लाइट का ताज था, मेरा जीवन संपूर्ण पवित्र था, चेहरे पर बहुत ज्यादा तेज था, पवित्रता थी, सामने आ जाए, ये है मेरा स्वरूप। फिर पूज्य स्वरूप, भक्ति में उन महान आत्माओं की पूजा होती रही जिन्होंने भगवान को मदद की थी, ये मेरा स्वरूप है। अब मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ, भगवान के पास आ गया, उसका बच्चा बन गया, वो मेरा हो गया, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरा जीवन पूरा बदल गया, वो जीवन पास था, पिछला था, समझो दो चार जन्म पहले की बात है वो, अब मैं भगवान की संतान, उसके परिवार में आ गया हूँ। और फिर पवित्र फरिश्ता, मैं लाइट के शरीर में हूँ, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, जैसे स्थूल शरीर है ही नहीं, या स्थूल शरीर लाइट के शरीर में बदल गया। और ये पांच स्वरूप एक बार करें, दो बार, तीन बार, पांच बार, तो इससे क्या होगा, ये सुंदर संस्कार जागृत होते जाएंगे और वो जो स्मृतियां हैं वो लोप होती जाएंगी। ये भगवान के महावाक्य भी हैं कि श्रेष्ठ स्मृतियों से पास्ट की स्मृतियां समाप्त होती हैं, तो क्योंकि वो हमारे ब्रेन में छपी रहती हैं, ये छपती जाएंगी तो वो निकलता
जाएगा। व्रता जी, जो अभ्यास आपने बताया ये पांच स्वरूपों की प्रैक्टिस, यदि मान लीजिए जस्ट इन्होंने शुरुआत ही किया है एक दो महीने, तो शायद इस विषय को उतनी गहराई से ना समझ पाए, क्या ऐसी बनी हुई कुछ कमेंट्रीज या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे पढ़ करके सुन करके इसका अभ्यास करें? क्योंकि आप बताते हैं बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शायद उतना चिंतन एक जो शुरुआत कर रहा है वो नहीं कर पाता।
बिल्कुल, ये सत्य है। तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं
जी,
बुक्स भी हैं, कमेंट्री भी हैं, सीडी बनी हुई हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। मैं एक छोटी सी ड्रिल और बताता हूँ, ये थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इनको सुखद फीलिंग होगी। 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम, दो बार तो कम से कम, हो सके तो 10 मिनट मॉर्निंग अर्ली आवर्स में भी। मैं आत्मा हूँ, अपने स्वरूप को मस्तक के मध्य में देखें, मुझसे किरणें फैल रही हैं, मैं बहुत पवित्र हूँ, 10 सेकंड। फिर 10 सेकंड अपने परम पिता को देखें, वो महाज्योति निराकार अजन्मा, उससे भी किरणें फैल रही हैं दूर दूर तक। फिर 10 सेकंड आत्मा को देखें, फिर 10 सेकंड बाबा को देखें, 10 मिनट ये ड्रिल करते रहें, 20-25 बार हो जाइए। तो इससे मन जो एकाग्र होगा धीरे धीरे, उससे मन जाएगा परमानंद की स्थिति में, और जब मन परमानंद में रहने लगता है तो तेजी से सब कुछ डिलीट होने लगता है, तेजी से।
जी जी,
जैसे सीडी हमारी हो और उसके पास कोई पावरफुल एनर्जी रख दी जाए तो सब खत्म हो जाएगी ना, ऐसे ही ये ड्रिल करने से मन आनंदित होगा। ऐसे अभ्यासी को अव्यक्त मुरली साकार मुरली, जो बाबा के महावाक्य हैं, भगवान की वाणी है, उसका भी अध्ययन करते रहना चाहिए। तो 5 बार कर ले दिन में, जरूरी नहीं घंटों पढ़े, 5-5, 7-7 मिनट पढ़ लें, तो ये ब्रेन में प्रिंट होती जाएगी, वो हटती जाएगी,
डिलीट होती जाए। तो यही तरीके व्रता जी सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नियरेस्ट इनकी जो ब्रांच हो ब्रह्मा कुमारीज की, वहां से ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी ही, वो ले आए, सेवा केंद्र पे भी जाए तो और बेहतर होगा। आगे भी इन्होंने दूसरा प्रश्न किया व्रता जी की, ये सबकॉन्सियस माइंड में जो ये सारी चीजें चली गई हैं उसे कैसे साफ करें, वो आपने बता ही दिया है। तीसरी बात कहते हैं कि कभी कभी ड्रीम में ये बुरे बुरे स्वप्न जो मैंने देखे हुए हैं, लस्टफुल जो पिक्चर्स हैं, वो मेरी ड्रीम्स में भी आ जाती हैं, क्या उसके लिए भी कुछ किया जाए?
बहुतों के साथ ये हो गया है, लस्टफुल फीलिंग्स, लस्टफुल पिक्चर्स, लस्टफुल कंपनी, सारा कुछ ऐसा। क्लब्स में डांस होते रहते हैं, सारी वो गंदगी गंदगी रहती है, लोग वहां जाना बड़ा रॉयल अपने को समझते हैं, पैसे वाले लोग वहां जाते हैं, तो इन सब का इफेक्ट सचमुच बहुत बुरा पड़ गया है। इन्होंने ब्रेन को भी कमजोर कर दिया है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी संपूर्ण निगेटिविटी भर दी है। वो निगेटिविटी, वो बैड एनर्जी हमारे ब्रेन को आती रहती है और जो बहुत सारी चीजों को डैमेज करती रहती है। ये बात वो लोग नहीं जानते, पर यही सत्य है, और हम ये एक वेव फैलाना चाहते हैं संसार में कि ये सब चीजें बुरी हैं, इनसे बचो। हमारे ऐसे लाखों करोड़ों साथी ये अब लहरें फैला रहे हैं दुनिया में, सबको बता रहे हैं ये गंदगी है, इससे बचो, जो आगे बच जाए वो भी अच्छा, नहीं तो आज सबके हाथ में लैपटॉप है, इंटरनेट है, गंदगी समझो गंदगी जेब में डाली हुई है सारी, तो बदबू तो फैलती रहेगी। तो इनसे बचने के लिए जैसे मैंने कहा, ये 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत मदद करेगा। लेकिन एक चीज मैं और जोर देना चाहता हूँ, सवेरे 4 बजे उठकर सुंदर चिंतन करें और अपने परमपिता से बहुत अच्छी बातें करें, जैसे वो सामने हो हमारे, और उससे बहुत अच्छी बातें करें। लक्ष्य हमारा ये हो कि मन परमानंद से भरपूर होता चले, बस ये हम लक्ष्य बना लें। और ये एक सुंदर फिलॉसफी है कि मन आनंदित होते ही बहुत सारी निगेटिविटी नष्ट हो जाती है। थोड़ी देर का आनंद, चाहे वो 2-3 मिनट का ही हो, लंबे समय की इन सब निगेटिव बातों को नष्ट कर देगा। तो योग अभ्यास, ज्ञान का चिंतन, उसका पठन पाठन, सुनना, और भी एक चीज जोर देना चाहता हूँ, हमारे सेवा केंद्र हैं जिनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है, जो स्वयं भगवान ने रचा है इस युग को बदलने के लिए रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, उस यज्ञ की सेवा भी करें। ये बहुत बड़ा पुण्य होता है और इस पुण्य से भी वो पाप की रेखाएं मिटने लगती हैं।
बिल्कुल, तो ये जो स्वप्न की बात है व्रता जी, इन सारे अभ्यासों से भी वो क्लियर हो जाएंगे और इनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। चलिए और भी एक दो इसी से संबंधित बातें इन्होंने पूछी है व्रता जी, आज वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से।